ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर पटाखों की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिल्ली के कई हिस्से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार में विधायक विनय मिश्रा ने आज से दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष पद संभाला और त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो 29 और 30 अक्टूबर को 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 5 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया। इस बीच प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी में 0 से 50 के बीच का सूचकांक अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सूचकांक को मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब तथा 401 से 450 के बीच के सूचकांक को गंभीर माना जाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को आज पत्र लिखकर पटाखों की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। पत्र में श्री राय ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली के कई बाजारों में इनकी बिक्री जारी है। पर्यावरण मंत्री ने उपराज्यपाल से कहा है कि वे शहर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दें ताकि राजधानी के पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचाया जा सके। राजधानी दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद में अगले साल जनवरी तक पटाखों की बिक्री, भंडारण और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की है। ये योजना किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पूरी तरह पराली न जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेड जोन के अंतर्गत आने वाली पंचायतों को 1 लाख रूपये जबकि येलो जोन की पंचायतों को 50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब तक 83,070 किसान 7,11,000 एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। धान की फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस वर्ष हरियाणा में अब तक पराली जलाने के कुल 713 मामले दर्ज किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% कम है। दिल्ली भाजपा ने राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीते शनिवार को पंजाब में पराली जलाने की 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार केवल हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दोषी ठहरा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद दिल्ली सरकार पराली जलाने पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है।
पराली से लड़ने के लिए इन राज्यों को दिए हैं, लेकिन आज भी 1.5 लाख से ज्यादा मशीनें पंजाब में एसडीएम और डीएम के यहाँ धूल फाक रहे हैं, जिनसे पराली को रोका जा सकता था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है सरकार, उसके बावजूद भी अगर आप पराली पर रोक नहीं लगा रहे तो सीधा सीधा ये आप राजनीति खेल रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, आज 10 में से हर 3रा आदमी बीमार है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा अधिक होने के कारण शुक्रवार तक कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के दक्षिणी, मध्य, उत्तरी और पूर्वी इलाकों के कई हिस्सों में जलापूर्ति बाधित है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र भी पानी की समस्या की चपेट में है। शहर में पानी की समस्या का मुख्य कारण यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा में बढ़ोतरी बताया जा रहा है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले दूषित पानी छोड़ने का आरोप लगाया।
हरियाणा सरकार पराली जला के दिल्ली वालों को परेशान करती है, अब पानी में भी सही से परेशान कर रही है। तो हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों को पहले तो प्रदूषण की मार दे रही है, उसके बाद जो है प्यासा भी रखना चाह रही है। आज हमने प्लांट विजिट किया है, कल मैं मुख्यमंत्री साहब से मिल रहा हूँ, उससे बात करके कैसे इसको और जल्दी और नॉर्मल करा जाए उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर यमुना नदी की सफाई और राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने में विफल रही है।
दिल्ली की सरकार जल संकट के विषय में पिछले 10 वर्षों में कोई सार्थक कदम उठा नहीं पाए हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा किस प्रकार से दिल्ली की बढ़ती आबादी को देख करके जल संकट का समाधान निकाला जाए।
शहर में खराब वायु गुणवत्ता के बीच जल संकट ने दिल्ली वासियों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ भानु प्रताप सिंह।
दिल्ली सरकार में विधायक विनय मिश्रा ने आज दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष पद संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर में पानी और सीवर की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। श्री मिश्रा ने दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण की बढ़ोतरी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जलने वाली पराली और वहां से यमुना में छोड़े जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से यमुना नदी के प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। श्री मिश्रा ने यमुना के पानी में औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी से अपील की है कि वे हरियाणा सरकार से इस मुद्दे पर बात करें ताकि दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मिल सके। वहीं श्री मिश्रा ने कहा है कि उनकी सरकार हर साल की तरह इस बार भी यमुना नदी पर छठ पूजा के पर्याप्त प्रबंधन करेगी। दिल्ली नगर निगम के सदन की आज बैठक हुई। इस दौरान महापौर डॉ शैली ओब्रॉय ने घोषणा की कि महापौर पद के लिए चुनाव अगले महीने आयोजित करवाया जाएगा। इससे पहले विपक्ष ने डॉ शैली ओब्रॉय के सदन में देरी से पहुंचने और शहर में वायु और प्रदूषण को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने महापौर डॉ शैली ओब्रॉय और आम आदमी पार्टी से मांग की है कि वे बिना देरी के महापौर चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव समय पर नहीं करवाए गए तो भाजपा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज राजधानी के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिभावकों के साथ शिक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक राजेश गुप्ता और दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओब्रॉय मौजूद रही। वहीं कांग्रेस ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से दिल्ली न्याय यात्रा का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी का सीधे जनता से जुड़ना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में युवा उद्यमियों के योगदान को रेखांकित किया। आज नई दिल्ली में नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस सेमिनार में वायुसेना, थलसेना और तटरक्षक बलों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 115 स्टॉल लगाए गए हैं। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज नई दिल्ली में ग्रासरूट क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की घोषणा की। इस परीक्षण का उद्देश्य उन्नत स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। एम्स दिल्ली ने एक बयान में कहा कि स्टेंट रिट्रीवर एक अगली पीढ़ी का उपकरण है जिसे भारतीय आबादी में खून के थक्के की अनूठी विशेषताओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। इस सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति है। ये सप्ताह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो रेल के फेरों को बढ़ाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया है कि मेट्रो में भीड़ को कम करने और यात्रियों को आसान सफर उपलब्ध करवाने के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो रेल कल और परसों 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। DMRC ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान वे मेट्रो का सफर करें और शहर के प्रदूषण को कम करने में योगदान दें।
29 और 30 तारीख को दिल्ली मेट्रो ने डिसीजन लिया है कि 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स हम चलाएंगे, क्योंकि रश बहुत है दिवाली में और पब्लिक को एडिशनल सुविधा हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमारे जो रिजर्व ट्रेन हैं उनको भी हमने सर्विस में डाल दिया है पब्लिक के सुविधा के लिए।
वहीं त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए हैं। दोनों स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट मशीन, पूछताछ काउंटर, खाने पीने की सुविधाओं और मोबाइल शौचालय वाले विशेष होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश के स्तर पर ही आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे ने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए कई प्रबंध किए हैं। रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित समय से कम एक घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी है, ताकि अंतिम समय में उन्हें भीड़भाड़ का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अनुपम प्रकाश उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्रोताओं को डेंगू के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर फोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR के साथ भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। डिसलेक्सिया के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों पर लाल रोशनी की गई। प्रतिवर्ष अक्टूबर महीना अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोगी के बारे में नकारात्मकता को कम करना और भेदभाव को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और विस्तार देते हुए 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का दायरा बढ़ाएंगे। इससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। राजधानी दिल्ली में मौसम आज सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर पटाखों की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिल्ली के कई हिस्से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार में विधायक विनय मिश्रा ने आज से दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष पद संभाला और त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो 29 और 30 अक्टूबर को 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।